ये आकाशवाणी दिल्ली है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु गुणवत्ता फिर खराब होने के कारण ग्रेव 3 के संशोधित चरण को फिर से लागू किया गया। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने मुख्यमंत्री आतिशी से विधानसभा का विशेष सत्र तत्काल बुलाने को कहा। वाहनों के लंबित ट्रैफिक चालानों के निपटान के लिए 20 दिसंबर से दिल्ली की सभी जिला न्यायालयों में विशेष अदालतें आयोजित की जाएंगी। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 2 दिवसीय दिल्ली राज्य पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2024 आज से शुरू और नई दिल्ली के इंडिया गेट पर 22वें दिव्य कला मेले का आयोजन। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु प्रदूषण में वृद्धि और फिर से खराब होती वायु गुणवत्ता के कारण वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग CQAM ने दिल्ली NCR क्षेत्र में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान ग्रेव 3 के संशोधित चरण को फिर से लागू कर दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक 350 से अधिक होने के बाद आयोग ने ये निर्णय लिया।
आयोग ने कहा है कि दिल्ली NCR क्षेत्र में हवा की शांत स्थिति और भवन निर्माण से उत्पन्न धूल ने प्रदूषण को बढ़ा दिया है, जिससे वायु गुणवत्ता फिर से खराब श्रेणी में पहुंच गई है। इस संबंध में आयोग की उप समिति ने एक बैठक कर वायु गुणवत्ता की समीक्षा की थी। वायु की गुणवत्ता को और अधिक बिगड़ने से रोकने के लिए ग्रैप 3 लागू कर दिया गया है। इसके तहत पहले से लागू ग्रैप के संशोधित चरण 1 और चरण 2 के तहत उल्लेखित सभी कार्यों पर दिल्ली NCR क्षेत्र में प्रतिबंध रहेगा। आयोग ने ग्रैप 3 को प्रभावी रूप से लागू के लिए सभी एजेंसियों को भी निर्देश जारी किए हैं। प्रादेशिक समाचार के लिए रईसुद्दीन के साथ आदर्श, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने मुख्यमंत्री आतिशी से दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र तत्काल बुलाने को कहा है। उपराज्यपाल ने विशेष सत्र में दिल्ली सरकार की परियोजनाओं से जुड़ी नियंत्रक और महालेखा परीक्षक CAG की 14 लंबित रिपोर्ट को भी सदन में प्रस्तुत करने को कहा है। श्री सक्सेना ने अपने पत्र में इस बात पर जोर दिया कि संवैधानिक आदेश का पालन सुनिश्चित करने के बिना समय गवाए सत्र बुलाया जाए। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
उपराज्यपाल ने अपने पत्र में CAG की जीन रिपोर्ट का उल्लेख किया है। वे दिल्ली सरकार की विभिन्न योजनाओं से जुड़ी हैं। इनमें दिल्ली में शराब के विनियमन और आपूर्ति, दिल्ली में वाहनों से होने वाले वायु प्रदूषण की रोकथाम और उनके निवारण, सार्वजनिक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा और स्वास्थ्य सेवाओं का प्रबंधन और दिल्ली परिवहन निगम के कामकाज और निष्पादन जैसी परियोजनाएं शामिल हैं। ये सभी रिपोर्ट दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के कार्यकाल की अवधि से जुड़ी हैं। उपराज्यपाल ने कहा है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकार की वित्तीय और प्रशासनिक सेहत का आकलन करने के लिए CAG की रिपोर्ट महत्वपूर्ण होती हैं, जो शासन में पारदर्शिता को दर्शाती हैं। प्रादेशिक समाचार के लिए रईसुद्दीन रिहान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में आम आदमी पार्टी ने आज महिला अदालत कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम को पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, मुख्यमंत्री आतिशी तथा समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने संबोधित किया। श्री केजरीवाल ने कहा कि आज से 10 वर्ष पहले दिल्ली की जनता ने उन्हें शहर के सरकारी स्कूल, अस्पताल, बिजली पानी की व्यवस्था ठीक करने का दायित्व दिया था, जिसको उन्होंने पूरा किया है। श्री केजरीवाल ने आरोप लगाते हुए कहा कि जनता ने भाजपा की केंद्र में सरकार को 10 वर्ष पहले दिल्ली की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी थी, जो अभी तक सुनिश्चित नहीं हो पाई है, बल्कि भाजपा ने दिल्ली की कानून व्यवस्था को और खराब कर दिया है। उन्होंने कहा कि महिलाएं बताती हैं कि पुलिस उनकी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं करती। भाजपा के लिए दिल्ली में बिगड़ी कानून व्यवस्था और महिलाओं की सुरक्षा कोई मुद्दा नहीं है।
बीजेपी वाले कह रहे हैं दिल्ली में कानून व्यवस्था कोई मुद्दा ही नहीं है। बीजेपी वालों से मीडिया वालों ने पूछा, भैया केजरीवाल घूमता फिर रहा है पूरे दिल्ली के अंदर, जगह जगह हत्या हो रही है, फिरौती मांगी जा रही है व्यापारियों से, दिल्ली में खुलेआम शूटआउट हो रहे हैं, गैंग वॉर हो रहे हैं, दिल्ली की महिलाएं सुरक्षित नहीं है, इस पे आपको क्या कहना है? बीजेपी वाले कहते हैं दिल्ली में कानून व्यवस्था कोई मुद्दा ही नहीं है। वो लोग कहते हैं कि महिलाओं की सुरक्षा कोई मुद्दा ही नहीं है।
अखिलेश यादव ने कहा कि वो भरोसा दिलाते हैं कि पूरी जिम्मेदारी के साथ समाजवादी पार्टी महिलाओं और उनके मुद्दों के साथ खड़ी है। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आज हरिनगर आश्रम इलाके में अपने चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री सिसोदिया ने कहा कि उनकी पार्टी ने बीते 10 वर्षों में दिल्ली के विकास के लिए बेहतर काम किया है, जिसके आधार पर वो फिर से सत्ता में आएंगे और जनता की सेवा करेंगे। श्री सिसोदिया को पार्टी ने जंगपुरा विधानसभा से अपना उम्मीदवार घोषित किया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली में वाहनों के लंबित ट्रैफिक चालानों के निपटान के लिए 20 दिसंबर से दिल्ली की सभी जिला न्यायालयों में विशेष सायंकालीन अदालतें आयोजित की जाएंगी। ये अदालतें न्यायालय के सभी कार्य दिवसों पर शाम 5 से 7 बजे तक कार्य करेंगी। इन अदालतों का आयोजन दिल्ली जिला न्यायालय और दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के सहयोग से किया जा रहा है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने वाहनों के स्वामियों से अपने लंबित चालानों के निपटान के लिए इस अवसर का लाभ उठाने का आग्रह किया है। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने महान तबला वादक उस्ताद जाकिर हुसैन के निधन पर शोक व्यक्त किया है। अपने संदेश में श्री सक्सेना ने कहा कि श्री हुसैन का जाना भारतीय संगीत और सांस्कृतिक परिवेश के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। आम आदमी पार्टी द्वारा आज आयोजित की गई महिला अदालत पर भाजपा ने कड़ी टिप्पणी की है। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि महिला जैसे संवेदनशील मामले पर आम आदमी पार्टी राजनीति कर रही है। उन्होंने कहा कि इस अदालत की सार्थकता तब होती जब श्री केजरीवाल अपनी ही पार्टी की नेता स्वाति मालीवाल द्वारा लगाए गए आरोप का संज्ञान लेते हुए उन्हें न्याय दिलाती।
महिला अदालत लगी रही थी तो और बेहतर होता कि वहाँ उस अदालत में आपके घर में जिस महिला के साथ दुर्व्यवहार हुआ उसको वहाँ न्याय मिल जाता। स्वाति मालीवाल को बुला के वहाँ न्याय दे देते कि देखो महिला अदालत में हम एक महिला सांसद के साथ न्याय कर रहे हैं।
केंद्र ने कहा है कि देश में विभिन्न राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों और प्रदूषण नियंत्रण समितियों ने 3,519 अत्यधिक प्रदूषण करने वाले उद्योगों की पहचान की है। पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में बताया कि मानदंडों का उल्लंघन करने वाली संस्थाओं के खिलाफ कार्रवाई के बाद 669 अत्यधिक प्रदूषण फैलाने वाले उद्योग बंद हो गए हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि नदियों के पानी की गुणवत्ता की निगरानी के लिए एक अलग व्यवस्था विकसित की जा रही है। उन्होंने कहा कि 4,736 स्थानों पर पानी की गुणवत्ता की निगरानी की जा रही है। राष्ट्रीय जल गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम के अंतर्गत 645 नदियों के जल की गुणवत्ता की निगरानी की जा रही है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदूषित जल और सीवरेज जल के उपचार के लिए 32,513 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से कुल 203 सीवरेज बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है। पश्चिमी और मध्य दिल्ली के लगभग 1,000 ऑटो चालक आज विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा को समर्थन देने भाजपा के दिल्ली कार्यालय पहुंचे। इस अवसर पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ऑटो चालकों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव के लिए ऑटो चालकों की ओर से भाजपा को भारी समर्थन मिल रहा है। श्री सचदेवा ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में दिल्ली सरकार ने ऑटो चालकों से वादा करके सिर्फ उन्हें गुमराह करने का काम किया। इस अवसर पर श्री सचदेवा ने प्रदेश कार्यालय से ऑटो चालकों की एक समर्थन रैली को झंडी दिखाकर विदा भी किया। शिक्षा मंत्रालय ने बताया है कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने पिछले 6 वर्षों में देश भर में 5,04,00,000 से अधिक उम्मीदवारों की भागीदारी वाली 240 से अधिक परीक्षाएं आयोजित की हैं। शिक्षा राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार ने आज लोकसभा में एक लिखित उत्तर में बताया कि NTA द्वारा पेन और पेपर के माध्यम से तथा कंप्यूटर आधारित परीक्षा कराई जा रही है। राज्यसभा में आज भारत के संविधान के 75 वर्षों की गौरवशाली यात्रा पर एक विशेष चर्चा शुरू हुई। इस चर्चा में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और संविधान की रक्षा के मुद्दे पर विपक्ष को जवाब देने के लिए सत्ता पक्ष की ओर से वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने मोर्चा संभाला। चर्चा की पहल करते हुए उन्होंने 1949 में नियम की आलोचना करने के लिए प्रसिद्ध गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी और अनुभवी अभिनेता बलराज साहनी को जेल भेजने संबंधी कांग्रेस के फैसले का हवाला दिया। श्रीमती सीतारामन ने कांग्रेस शासन के दौरान प्रतिबंधित पुस्तकों और फिल्मों की सूची का भी उल्लेख किया। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी ने एक परिवार की मदद करने और लोकतंत्र को सशक्त बनाने की बजाय सत्तासीन लोगों की रक्षा करने के लिए संविधान में संशोधन किया। वित्त मंत्री ने देश में आपातकाल थोपने के लिए कांग्रेस की आलोचना की। उन्होंने कहा कि उचित तर्क के बगैर आपातकाल के दौरान लोकसभा के सत्र का विस्तार किया गया। इस विस्तारित सत्र के दौरान विपक्षी दलों के सदस्यों को जेल भेज दिया गया था। अपने संबोधन में श्रीमती सीतारामन ने संविधान सभा के सदस्यों का स्मरण किया। उन्होंने इसमें शामिल 15 महिला सदस्यों के विशेष योगदान को भी सराहा। उन्होंने कहा कि भारत निर्माण के लिए प्रतिबद्धता की फिर पुष्टि करने का समय आ गया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में दो दिवसीय दिल्ली राज्य पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2024 का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता में दिल्ली नगर निगम के स्कूलों के 150 से अधिक छात्र अपने असाधारण कौशल का प्रदर्शन कर रहे हैं, जो खेल और समावेशिता को बढ़ावा देने के लिए निगम की प्रतिबद्धता दर्शाते हैं। निगम के अपर आयुक्त अमित कुमार शर्मा ने आज प्रतियोगिता के उद्घाटन समारोह में हिस्सा लिया। इस अवसर पर उन्होंने सभी खिलाड़ियों को अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित किया। निगम ने बताया कि इस प्रतियोगिता का उद्देश्य प्रतिभाशाली पैरा एथलीट्स के कौशल को प्रदर्शित करने, मान्यता देने और भविष्य के अवसरों का मार्ग प्रशस्त करने के लिए एक मंच प्रदान करना है। इस प्रतियोगिता का आयोजन एक गैर सरकारी संस्था द्वारा किया जा रहा है। नई दिल्ली के इंडिया गेट पर 22वां दिव्य कला मेला आयोजित किया जा रहा है। इस मेले में 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से लगभग 100 दिव्यांग उद्यमी और कारीगर अपने उत्पादों और कौशल का प्रदर्शन कर रहे हैं। इस मेले का उद्देश्य देश भर के दिव्यांग शिल्पकारों, उद्यमियों और कलाकारों की अद्भुत प्रतिभा, रचनात्मकता और उद्यमशीलता को प्रदर्शित करना है। हमारे संवाददाता ने बताया कि दिव्य कला मेले में देश भर से पहुंचे दिव्यांग उद्यमी और कलाकार अपने उत्पादों को कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली के अलावा फरीदाबाद, गाजियाबाद और नोएडा से भी बड़ी संख्या में आगंतुक दिव्यांगजनों की प्रदर्शनियों को देखने के लिए पहुंच रहे हैं। जो स्टॉल सबसे ज्यादा देखे जा रहे हैं उनमें हस्तशिल्प, हथकरघा, कढ़ाई के काम, पर्यावरण अनुकूल स्टेशनरी और जीवन शैली से जुड़े सामान जैसे स्टॉल शामिल हैं। मेले में सांस्कृतिक उत्सव एक विशेष आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में प्रदर्शक लतिका ने बताया कि उनके काम को मेले में काफी सराहना मिली है।
मेरा नाम लतिका है और मैं दिल्ली से हूँ। मैं एक आर्टिस्ट हूँ जो कि मैंने कॉलेज ऑफ आर्ट से अपनी मास्टर कंप्लीट करी है और मेरा काम इंडिया गेट पर लगा हुआ है एज ए हैंडीकैप। मेरे आर्टिस्ट मैं इसलिए हूँ क्योंकि मुझे आर्ट में काम करना अच्छा लगता है। मैं पेंटिंग, वुड कट, रेजिंग आर्ट सब तरह के काम कर सकती हूँ मैं। आप सब आओ, यहाँ पे विजिट करो। मेरे साथ मेरे दोस्तों का भी काम लगा है, आप उनको भी देखो।
जम्मू कश्मीर से आए मोहम्मद शफी ने बताया कि उनके हाथ से बने शॉल को लोग खूब पसंद कर रहे हैं और वो अपने उत्पादों पर छूट भी दे रहे हैं।
मेरा नाम मोहम्मद शफी है, मैं जम्मू एंड कश्मीर से आया। मैं यहाँ पे प्रोडक्ट लेके आया, कश्मीरी शॉल है, कश्मीरी सूट है और कश्मीरी साड़ी है। हम लोग खुद बनाते हैं तो इसलिए यहाँ पे जो एग्जीबिशन लगा है यहाँ पे आपको 70% लेस मिलेगा प्राइस।
22 दिसंबर तक आयोजित इस मेले में लोग सवेरे 11 बजे से रात 9 बजे तक निशुल्क आनंद ले सकते हैं। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश में करीब 21 फर्जी विश्वविद्यालय हैं। शिक्षा राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार ने आज लोकसभा में जानकारी देते हुए बताया कि पिछले 10 वर्षों में 12 फर्जी विश्वविद्यालय बंद किए गए हैं। उन्होंने कहा कि कई संस्थानों और विश्वविद्यालयों के खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज की गई है। केंद्र ने कहा है कि उद्यम पोर्टल पर 5.5 करोड़ से अधिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग पंजीकृत हो चुके हैं। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने आज लोकसभा में ये जानकारी दी। दिल्ली में आज सवेरे के समय हल्की ठंड महसूस की गई, हालांकि दोपहर के समय धूप खिलने से मौसम सामान्य रहा। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 24.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, वहीं न्यूनतम तापमान 4.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान दिल्ली और आसपास के इलाकों में सवेरे और रात के समय हल्का कोहरा छाए रहने और ठंडी हवाएं चलने का अनुमान है। वहीं कल का अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु गुणवत्ता फिर से खराब होने के कारण ग्रेप 3 के संशोधित चरण को फिर से लागू किया गया है। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने मुख्यमंत्री आतिशी से विधानसभा का विशेष सत्र तत्काल बुलाने को कहा है। वाहनों के लंबित ट्रैफिक चालानों के निपटान के लिए 20 दिसंबर से दिल्ली के सभी जिला न्यायालयों में विशेष अदालतें आयोजित की जाएंगी। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में दो दिवसीय दिल्ली राज्य पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2024 आज से शुरू हुई और नई दिल्ली के इंडिया गेट पर 22वें दिव्य कला मेले का आयोजन किया जा रहा है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।